मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भई अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन को रोज रोज कैसे और बेहतर ढंग से जिया जाए जिससे कि यह मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो सके। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल ज्ञान की प्राप्ति में है। केवल ज्ञान भी बहुत जीवों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे विरले ही जीव होते हैं जो तीर्थंकर पद को पाकर अपना कल्याण करते हैं और जिनके माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। भावनाएं हमारे जीवन को कितना ऊंचा उठा सकती हैं, यह विचार करने की चीज है। सद्भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं, लेकिन दुर्भावनाएं अगर हमारे जीवन को घेर लें तो वे हमें पतन की तरफ भी ले जाती हैं। आचार्य भगवंतों ने संसार शरीर और भोगों के स्वभाव को दर्शाने वाली 12 भावनाओं के चिंतन की सलाह दी। संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए वैराग भावना भानी चाहिए, ऐसा कहा। 5 महाव्रतों को किस तरह से सुदृढ़ और सुस्थिर रखा जा सके जीवन भर, इसके लिए उमा स्वामी आचार्य महाराज ने एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं कही। मेरी भावना सर्वविदित और सुप्रसिद्ध है। ऐसे ही कोई भावनाओं के माध्यम से अपने और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तीर्थंकर पद भी पा सकता है। उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने में कारण जो बनती हैं वे 16 भावनाएं हैं, और इसीलिए उन्हें 16 कारण भावना कहते हैं, क्योंकि वे तीर्थंकर के बनने में तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं। लेकिन अकेले भावना के बहाने से काम नहीं होगा, भावना के साथ विशुद्धि होना जरूरी है। बेभावनाएं हमारे मन में हमारे जीवन में विशुद्धि तो लाती ही हैं, लेकिन उन भावनाओं को भाते समय भी अत्यंत विशुद्धि की आवश्यकता है। यहां मालूम पड़ता है कि उपादान की योग्यता के साथ साथ प्रबल निमित्त भी आवश्यक है। मात्र उपादान से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान और निमित्त की संयुति से ही होता है। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता और निमित्त में कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान में ही होता है। वर्तमान में बहुत चर्चा चलती है, लेकिन वस्तु स्वरूप अकेले चर्चा से स्पष्ट नहीं होता। वस्तु स्वरूप तो अपने उपादान को जागृत करके जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का निमित्त है उसे जुटाने पर ही प्राप्त होता है। निमित्त अपने आप मिल जाते हैं, इतना ही नहीं समझना चाहिए, निमित्त जुटाना भी पड़ते हैं। हम सबके पूर्व संचित पुण्य का उदय तो है ही हमारे साथ, लेकिन सच्चे देव का निमित्त मिलने पर ही हमारे उस पुण्य की अभिव्यक्ति हमारे आत्म कल्याण के कार्यों में होगी। हम चाहें तो उसी पुण्य के फल से अपने संसार बढ़ाने के कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। एक ही साता वेदनी के उदय में व्यक्ति के विवाह इत्यादि कार्य होते हैं, और उसी साता वेदनी के उदय में हाथ में पीछी कमंडल भी आता है। ये हमारे अपने पुरुषार्थ और बाह्य निमित्त पर निर्भर करता है। आज थोड़ी सी चर्चा इस तरह की करने का मन हो गया। एक ही साता वेदनी कर्म का उदय अगर हम चाहें तो उस साता वेदनी कर्म को ऐसे भुना सकते हैं कि अपना विवाह करके संसार में गृहस्थ जीवन जिएं, और उसी साता वेदनी के उदय में हम अपना पुरुषार्थ जागृत करके श्री गुरु का निमित्त पा करके और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर महाव्रतों को अंगीकार करके अग्रसर कर सकते हैं। 16 कारण भावनाएं हम और आप सब भा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने में कारण बनने वाली ये 16 कारण भावनाएं बिना केवली श्रुत केवली के पाद मूल के तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में कारण नहीं बन सकते। चाहिए प्रबल निमित्त चाहिए, आपके उपादान में योग्यता है सो ठीक है, लेकिन जब तक केवली शुद्ध केवली का पादमूल उनके श्री चरणों में बैठने का मन और उनके श्री चरणों में बैठ करके हम अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय की कारण नहीं बनेंगे। जबकि ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, और एकमात्र मनुष्य पर्याय में ही इनकी प्रतिष्ठापना होती है। बंध तो और भी पर्यायों में हो सकता है आश्रय, लेकिन प्रारंभ तो मनुष्य पर्याय में ही होता है और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। कितने निमित्त चाहिए, मनुष्य पर्याय मिले बिना उपादान में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन कार्य नहीं होगा। बाह्य तरोपादि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रवगत स्वभाव नैवान्यथा मोक्ष विदिंस पुंसाम तेनाभिनंदस तुम ऋषिर बुधानाम। हे वासुपूज्य भगवान, आपके जिन शासन में ये बात बहुत ठीक कही गई है कि बिना वाही और अंतरंग कारण के मिले कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ अंतरंग कारण से ही कार्य होता हो ऐसा नहीं है, और सिर्फ बाह्य कारण से ही कार्य होता हो ऐसा भी नहीं है, अंतरंग और बाह्य कारण दोनों के मिलने पर कार्य होता है। सो अंतरंग में तो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं और बाह्य में केवली शुद्ध केवली का पाद मूल और मनुष्य की पर्याय, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर के हम अपने उत्थान के लिए और प्रयत्न कर पाते हैं। भावनाएं तब फलीभूत होती हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता सील व्रतेश्वनुति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण अरहद आचार्य उपाध्याय या अरहद मरहदाचरण बहु भूल गया तो भूल गया। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्णति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरदाचारी बहुशत प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। थोड़ा सा भी होशियारी आई तो गया, थोड़ी होशियारी आ गई थी कि मेरे से बन रहा है। विनय के साथ ही बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा, ये मैंने बहुत बार अनुभव कर लिया और आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। ज्ञान के लिए विशुद्धि चाहिए, ज्ञान के लिए अभ्यास अभ्यास नहीं चाहिए, श्री गुरु की कृपा चाहिए। उपादान में क्षमता बिना निमित्त के नहीं आती, ये कहना चाह रहा हूं। यही सामने के सामने उदाहरण है। तो ये 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, पर अंतर अवश्य है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है। अरे भाई, सम्यक दर्शन तो स्वयं आत्मा की निर्मलता का नाम है, फिर अब सम्यक दर्शन की और निर्मलता क्या? कहते 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है वही निर्मल सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन में निर्मलता कैसे आती है? कहते कषायों की मंदता से आती है। और कषायों की मंदता कैसे होती? कहते व्रत नियम संयम और तत्व के अभ्यास से होती है। अभी तक तो हमने यही सुना था कि सम्यक दर्शन हो जाने पर सब काम हो जाता है, आज तो आप कुछ और भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं भाषा तो वही बोल रहा हूं जो आचार्य भगवंतों ने लिखी है। हमारे समझने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सम्यक दर्शन के होने पर उसकी निर्मलता कषायों की मंदता से होती, और उसके लिए व्रत नियम और तत्व का अभ्यास अनिवार्य है। जो निरंतर व्रत नियम और तत्व का अभ्यास करता उसके सम्यक दर्शन में निर्मलता आती चली जाती है। ये प्ररूपण अब बहुत कम जगहों पर होता है, कोई नहीं करता। सम्यक दर्शन जो चौथे गुण स्थान में, वही सीधा केवली भगवान के समय भी। क्यों? दर्शन मोहनी कर्म के क्षय क्षय उपसम उपसम की अवस्था है, चारित्र मोहनी का उसमें कोई काम नहीं। ऐसे ही होता ना प्ररूपण। भैया जी, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी एक ही आत्मा के भीतर हैं, अपनी जगह झार पहुंच के सारे कमरे में कचरे में बैठे रहो तो वो अनुभूति नहीं होगी जो साफ सुथरे कमरे में बैठने पर होगी। इतना तो समझ में आता है, जितनी जगह में बैठे उतनी साफ सुथरी, बाकी सब में गंदगी फैली, उसका असर होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। और पूरा कमरा साफ है और उसमें बैठे हैं, जहां मोह का सर्वथा अभाव हो जाए वहां विशुद्धि अलग होगी, और जहां मात्र मोह की दर्शन मोहनी मात्र गई है वहां पर विशुद्धि कितनी होगी? कुछ तो फर्क होगा कि एक ही जैसा है क्वालिटी नहीं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस हैं वहां पर, दोनों में कमी है, ना क्वालिटी है वो ना क्वांटिटी है वो। लेकिन ठीक है, अपना अपना समझने का ढंग है, कैसे भी समझ में आवे अपन को। मुख्य बात यह है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके जो दृष्टि हमने पाई है उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है, मुझे उसकी निर्मलता के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। इतना तो अपने को आसानी से समझ में आता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके एक दृष्टि मिलती है, ठीक वैसा ही अंतर है सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में जैसा देखने और दर्शन में फर्क है। देखने और दर्शन में क्या फर्क है? चलो देख के आते हैं हवा महल, चलो देख के आते हैं जंतर मंतर, या चलो देख के आते हैं कुतुब मीनार, चलो देख के आते हैं संसद भवन, और चलो दर्शन करके आते हैं मंदिर के, ऐसे ही ना कहा जाता? या ये कहा जाता है कि चलो दर्शन करके आते कुतुब मीनार के और देख आते हैं मंदिर? नहीं कहता, कोई नहीं कहता। क्यों? फर्क है देखने और दर्शन करने में। देखना होता है इन चर्म चक्षुओं से और दर्शन होता है हृदय की आंख से, श्रद्धा की आंख से। इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं होता, इन चर्म चक्षुओं से तो दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में फर्क है। सम्यक दर्शन के होने पर तत्व चिंतन हमेशा नहीं चल सकता, सम्यक दर्शन के होने पर तो तत्व चिंतन के साथ साथ पंचेंद्री के विषयों का चिंतन भी चलता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि जो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में कोई बिरला जीव भाता है, तब उस समय पंचेंद्री के विषयों का चिंतन नहीं होता, एकमात्र तत्व चिंतन होता है। यही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में निर्मलता का फर्क है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती, दृष्टि मिल जाना और फिर दृष्टि पर से निर्मलता आते चले जाना, दोनों बिल्कुल चश्मे उतार के रखना पड़ते हैं। अभी तो आंख ठीक होने पर भी शौक के लिए चश्मा लगा लेते हैं लोग, नहीं लगाते? ऐसे ही दृष्टि निर्मल होने के बाद भी तरह तरह के चश्मे लगाए जा सकते हैं, पर सब चश्मे उतार के रखना पड़ेंगे। कौन से? नए के पक्षपात के चश्मे भी निकाल के रखना पड़ेंगे। जरा अब बहुत दिन हो गए, अब तो ये चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करके सोच रहा हूं कि सैद्धांतिक चीजें भी नहीं तो कभी नहीं आएंगी, फिर बीच बीच में जो है जरा सा सिद्धांत भी समझते चले जाएं। वैसे तो सहसा समझ में नहीं आता, पर फिर भी नए के पक्षपात से भी रहित होना पड़ेगा। क्यों? हम तो ये जानने की पद्धतियां हैं, उनसे जान करके उन पद्धतियों को एक तरफ जब रख देंगे तब वस्तु स्वरूप ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ा कि दृष्टि मिल जाने के बाद भी नए का पक्षपात भी ना हो, वो चश्मा भी उतार के रख देना, तब जाकर के जो अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति है वो होगी, तब विशुद्धि बढ़ेगी और वह दर्शन विशुद्धि जाकर के फिर आश्रम में कारण बनेगी, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम। सारा संसार कहता है कि आश्रम और बंध तो संसार का कारण है। देखो किसी भी जगह आप किसी भी आचार्य भगवंत के चरणों में बैठ करके पूछ लो कि आश्रय और बंध संसार के कारण है, तो एक स्वर में कहेंगे कि आश्रय और बंध संसार के कारण है। और वहीं पर अगर किसी आचार्य भगवंत के चरणों में बैठ के पूछो कि तीर्थंकर नाम कर्म, तो कहते तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय भी अपने और प्राणी मात्र के कल्याण में कारण है। कहां एक तरफ कह रहे हैं कि आश्रय और बंध संसार के कारण है, वहां दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म है जिसका आश्रय भी अपने और प्राणी मात्र के कल्याण में कारण बनता है। ये विशेषता है उस दर्शन विशुद्धि की। दृष्टि पर से सारे आवरण हट गए हैं, अत्यंत निर्मल हो गई है दृष्टि। अजमेर की घटना है आचार्य महाराज के साथ में, वो सुनाते हैं कि ऐसा हुआ, कुछ लोग आए। आज भी ऐसे लोग हैं कहने वाले, महाराज आपका आचरण बहुत उत्कृष्ट है, आपकी तपस्या बहुत उत्तम है, आपकी सब बातें, आपका ज्ञान सब बहुत अच्छा है, पर एक बात कहनी है महाराज। आचार्य जी ने कहा, कहो महाराज। आप सब लोगों के बीच में विचरण करते हैं, आप अगर एक लंगोट धारण कर लेवें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सबके बीच में रहना पड़ता है। आप तो वीतरागी हैं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि तो राग की है, इसलिए कहा मैंने महाराज आप बुरा नहीं मानना। इतनी सब बातें कह दी महाराज से। आचार्य महाराज तो हमेशा से और जवाब देते हैं तो बड़े विनोद के भाव से देते हैं, बड़े हंस करके जवाब देते हैं। तो बोले कि हाँ भाई आपकी बात तो ठीक है, विचार करने योग्य है। तो उनको बड़ा साहस मिला, भी और खिसक के आए थोड़े पास में, कि महाराज ने लगता है बात मान ली। आचार्य महाराज बोले कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में अपरिग्रह को बहुत महत्व दिया है। कहते हाँ महाराज, अपरिग्रह को तो महत्व दिया ही है, तो ऐसा अपन कर ले में इसका उपाय ही तो करना है। आपके भीतर राग ना जागृत हो, मेरे भीतर तो आप कह रहे हैं कि वीतरागता है ही, तो एक बहुत आसान सा उपाय है, दो छोटी छोटी सी पट्टियां बनवा ली जाएं। अब उनके समझ में नहीं आया, लंगोट में तो कपड़ा जरा ज्यादा लगेगा, छोटी छोटी सी पट्टियों में तो कम लगेगा। हाँ महाराज, कम तो लगेगा, तो पट्टियों का क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, उनको यहां पर बांध लेना, जब मैं निकलने लगूं तो गिरा लेना। आ गया समझ में? आप अपनी आंख संभाल लो, अपनी दृष्टि संभाल लो। संसार में हम सब कुछ संभाल लें और हमारी आंख ना संभले, हमारी दृष्टि निर्मल ना हो, तो ये संसार कैसा दिखाई पड़ेगा? बहुत बहुत ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सारा सुख इसी में है। और दृष्टि निर्मल हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि सुख संसार में नहीं है, सुख तो मेरी अपनी आत्मा में ही है। यह जो सुख मेरी आत्मा में है, वह आत्म सुख, यह दृष्टि की निर्मलता है। अभी तो दृष्टि की निर्मलता होने के बाद भी पंचेंद्रिय और मन के विषयों में सुख मालूम पड़ता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब तक वह सराग अवस्था है, तब तक पंचेंद्रिय के विषयों में भी सुख मालूम पड़ेगा, तभी तो उन्हीं के लिए प्रयत्न करेंगे सुबह से शाम तक। नहीं करते हैं? करते तो हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी करते हैं। विशुद्धि तब आएगी जब इन पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होंगे। दर्शन विशुद्धि भावना ऐसी ही है जिसमें कि पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त हो गए, उनका चिंतन भी नहीं है, एकमात्र आत्मा का चिंतन है, आत्मा के उस अनंत सुख का वहां रसास्वादन है। जबकि अविरत सम्यक दृष्टि है जो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठा हुआ है, एकमात्र तत्व चिंतन कर रहा। और दूसरी चीज, उस तत्व चिंतन के साथ साथ क्या भावना जरूरी है? स्वपर कल्याण की भावना जरूरी है। मुमुक्षु तीन प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने शायद पहले भी कभी कहा हो, ना भी कहा हो, एक वे हैं जो कि अपने ही आत्म कल्याण में लीन रहते हैं, वे भी मुमुक्षु हैं। एक वे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे के कल्याण में भी तत्पर रहते हैं, और तीसरे वे हैं जो पर के कल्याण में ही तत्पर रहते हैं। तीनों मुमुक्षु हैं, मुक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जिसको मुक्त होने की संसार से इच्छा जागृत हो गई है, वो सब मुमुक्षु हैं। पहले मुमुक्षु भगवान ऋषभदेव थे। ऐसा मोक्ष के तरफ बढ़ने का, संसार से मुक्त होने का भाव रखने वाला मुमुक्षु स्वपर कल्याण की भावना जब भाएगा, मेरे आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा, बाकी सबको नहीं होने वाला। विरले ही कोई 24 जीव होंगे भरत और ऐरावत में, और 160 होंगे पूरे विदेह क्षेत्रों में, कुल 170 ही जीव होंगे जो कि इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना की है, जिनके मन में प्राणी मात्र के प्रति ऐसा करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है। वास्तव में होता क्या है, मैं विचार कर रहा था कि पर के कल्याण की चिंता करना, यह तो वैसे आचार्यों ने इसको बहुत शाबाशी नहीं दी है, फिर यहां पर क्या भाव है उसका? जरा गौर से देखें तो दर्शन विशुद्धि के साथ में एक विशेषता जुड़ी हुई है कि एक बार उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया, अब जैसे ही अपने भीतर उस आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ, तो वैसी ही आत्मा सबकी है, उसके भीतर भी उस आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगे, और जब सबके भीतर आत्मा स्वरूप का दर्शन हो गया तब फिर सबके आत्मा के कल्याण की भावना आए बिना नहीं रहेगी। पर की चिंता नहीं है, पर के कल्याण की चिंता है, इतना फर्क है। अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण हो, सब अपने उस आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकें जिसे कि मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं। वो चीज एक अकेले मेरे पास क्यों रहे, सबके पास क्यों ना हो जावे, ऐसा विचार, ऐसी निर्मलता जिसके भीतर आती है उसके ही ये दर्शन विशुद्धि पहली भावना होती है। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि प्रमुख भावना है। इसके अलावा 15 ना भी हो तब भी एकमात्र दर्शन विशुद्धि से ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, होता ही है। और अगर विनय संपन्नता नंबर दूसरे नंबर की भावना है तो उसके साथ भी दर्शन विशुद्धि होना अनिवार्य है। चाहे कोई भी 15 भावना में से भावना हो उसके साथ दर्शन विशुद्धि तो अनिवार्य है। एकमात्र दर्शन विशुद्धि ही पर्याप्त है या अन्य कोई भी भावना हो तो उसके साथ दर्शन विशुद्धि जुड़ी हो, यानी मेरे आत्म कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तो 16 कारण भावनाओं में प्रमुख भावना है, वो हरेक के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के ये दृष्टि ऐसी प्राप्त होती है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये चारों गुण अभिव्यक्त होने लगते हैं। ये उसके बाद की स्थिति है। जैसे ही 25 दोषों से रहित अवस्था प्राप्त होती है और भीतर प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये भाव उत्पन्न होना शुरू होते हैं। अपन जरा सा इस पर विचार कर लें, आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। कषायों की मंदता का नाम प्रशम है और ज्यादा कठिन नहीं है। और कषायों की मंदता आती है व्रत नियम के द्वारा, इसलिए व्रत नियम के प्रति सम्मान का भाव, भले ही ना ले पाए, क्या एक भी व्रत नियम नहीं लिया हो फिर भी व्रत नियम के प्रति अत्यंत सम्मान की भाव, त्यागी व्रति के प्रति भी अत्यंत संभावना, अत्यंत सम्मान कि वाह आपने यह त्याग ग्रहण किया, आपने ये व्रत ग्रहण किया, क्योंकि वह व्रत और त्याग तो भगवान के द्वारा कहा हुआ ही है, इसलिए मैं आपके त्याग और व्रत का सम्मान करके इनडायरेक्ट भगवान की वाणी का सम्मान कर रहा हूं। वहां दृष्टि की इतनी निर्मलता है, वहां ये नहीं ध्यान जाता है कि अरे इसका सम्मान कर दिया, नहीं, यह तो व्रत का सम्मान भगवान की वाणी का, क्योंकि भगवान की वाणी में से ही वो व्रत आए थे और भगवान ने उन व्रतों का स्वयं पालन किया था, इसलिए भगवान का और उनकी वाणी का दोनों का सम्मान। तो कषाय की मंदता के लिए प्रशम भाव धारण होने पर व्रत नियम के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव आएगा, एक छटपटाहट भीतर मचेगी कि मैं कब व्रत नियम ले लूं, भले ही ना ले पाए, ऐसा अपने भीतर है क्या प्रशम भाव, आना चाहिए भैया अब बहुत समय हो गया, अब अपने मन में एक लालसा जागनी चाहिए कि क्या करूं दिन भर में, कैसे करूं कि थोड़ा तो मेरे जीवन में भी एक दिन के लिए ही सही, एक घंटे के लिए ही सही, मेरे जीवन में त्याग थोड़ा सा घटित हो, मेरा जीवन अनुशासित हो, व्रतों से युक्त हो। ये प्रशम भाव, कषाय की तीव्रता में ये भाव नहीं आएगा, कषाय की मंदता में ही ऐसा निर्मल भाव आएगा। और संवेग, दिन भर में बार बार ये संसार, यहां कर्मों का बंधन, उससे मिलने वाला सुख दुख निस्सार है सब, मुझे जल्दी से इस संसार से पार हो जाना है, बार बार ये भावना दिन भर चल रही है कि मुझे इस संसार में रचना पचना नहीं है, मुझे तो इस संसार से पार होना, ये संवेग है। या कि धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग होने का नाम संवेग है। जहां भी धर्म की चर्चा होती है, जहां कोई धर्म को धारण करने वाला दिख जाता है, वहां हृदय गदगद हो जावे, शरीर रोमांचित हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ा, ऐसा भाव हमारे भीतर आता है, वो संवेग है। और अनुकंपा, किसी भी जीव को अपना अकल्याण करते देख करके या कि अपने कर्मों का फल भोगते देख करके, विपत्ति और दुख में देख करके मन का कांप जाना। अभी तो विपत्ति और दुख में देख करके थोड़ा मन कांपता है, पतन के रास्ते पर जाते देख करके भी कांपना चाहिए कि अरे देखो यह आत्मा जिसके भीतर और मुक्ति पाने की सामर्थ्य छिपी हुई है और ये कैसे पतन के रास्ते पर जा रहे। मन कप जाता है। ये अनुकंपा है जिसमें कि उसके कल्याण के लिए और हम चिंतित हो जाएंगे कि कैसे क्या उपाय करूं जिससे कि यह आत्मा भी मोक्ष के मार्ग पर लग करके और अपना कल्याण कर लेवे। ऐसा भाव दर्शन विशुद्धि के होने पर ही आ सकता है। भावना अपन भाते हैं 16 कारण परवाने पर, लेकिन उसमें और थोड़ी सी अपन विशुद्धि लाएं, ऐसी भावना अपनी हमेशा बनी रहे। जब भी कोई व्रत नियम से विमुख होता दिखाई पड़े या व्रत नियम के प्रति उसका श्रद्धान ना होवे या कि वो अपने हाथ से ही अपने पतन के मार्ग पर जा रहा हो, तो मन में भाव आ जावे कि कैसे क्या करूं जिससे कि भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन मन में भाव आ जावे कि क्या कुछ ऐसा हो इसके पुण्य का उदय आ जावे या इसे ऐसा प्रबल निमित्त मिल जावे जिसके माध्यम से ये भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेवे और मैं कभी भी ऐसे मार्ग पर ना चलूं, मैं कभी भी ऐसे इसके समान भटक ना जाऊं, मैं भी कभी कर्म के उदय में अपना पतन ना कर बैठूं, ऐसी सावधानी, ये सारी चीजें। और आस्तिक तो है ही, अपने ऊपर विश्वास, अपने आत्मस्वरूप पर श्रद्धान, और जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है उन पर श्रद्धान। ये प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक, ये चारों चीजें जब हमारे भीतर प्रकट होने लगती हैं तब कितनी विशुद्धि बढ़ेगी। आप अनुभव करके स्वयं देखें। इन चारों चीजों का अपन तो सिर्फ प्ररूपण सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और ये चारों ही चीजें जब हमारे जीवन में आएंगी तो कैसा, कितना निर्मल हमारा जीवन होगा, कैसी हमारी दृष्टि हो जाएगी, फिर कहां किसके दोष दिखाई पड़ेंगे। फिर तो दिख भी जाएंगे तो लगेगा कि अरे ये कब अपने दोषों को हटा करके, या अपने स्वयं भी दोष देख करके लगेगा कि कब अपने इन दोषों को हटा करके मैं कब अपनी उस निर्मलता को प्राप्त कर लूं, और कैसे प्राणी मात्र भी कल्याण कर ले अपना। बार बार ये बात मन में बनी रहेगी, कैसे अपना आत्म कल्याण करूं और कैसे एक सब जीव अपना कल्याण, कैसे अपना आत्म कल्याण करूं और कैसे एक सब जीव अपना कल्याण कर ले। तब कोई तीर्थंकर बनता है, तब तो फिर उसके बाद जैसे ही केवल ज्ञान होता है सो सीधे नहीं जा सकते मोक्ष। हाँ, कंडीशन है, तीर्थंकर के लिए तो समो शरण में बैठना ही पड़ेगा, धर्म का उपदेश देनी पड़ेगा, भावना भाई थी पूर्व जीवन में, अब करो काम, अभी नहीं जा सकते, मुक्त नहीं हो सकते, आपने अपनी मुक्ति का उपाय किया है सो आप मुक्त होंगे, ये तो तय ही है, लेकिन प्राणी मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग बता करके ही आप जा सकेंगे अपनी मुक्ति के लिए। तब फिर तीर्थंकर के द्वारा ही धर्म का प्रवर्तन होता है। भैया, अगर तीर्थंकर ना होते, वे धर्म का प्ररूपण नहीं करते, तो हमें अपने मोक्ष मार्ग का ज्ञान कैसे होता। इसलिए तीर्थंकर तो बने हैं पर के कल्याण की भावना से, और हमें पर के कल्याण की का विचार आते ही लगने लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं है, ये तो अपने कल्याण की चर्चा करो, पर के कल्याण की का। हाँ, एक जगह पर लोगों ने मेरे कही जाने वाली चार लाइनों में से आधी लाइन बदल दी। कौन सी वाली? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो जब मैं बोलता औरों का, तो वो बोलते आत्मा का उपकार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, तो वो उनकी आवाज आती कि बने जहां तक इस जीवन में आत्मा का उपकार करूं। अपने को और दूसरे का उपकार करने में तो संसार मालूम पड़ रहा है। नहीं भाई, दूसरे के उपकार करने के पीछे भाव क्या है? हर आत्मा का कल्याण हो। उपकार, उपकार तो आत्मा के कल्याण होने पर ही होगा, और छोटे मोटे उपकार की चर्चा नहीं है। वो तो अपन खूब करते हैं, दूसरे का भोगोपभोग की सामग्री दे देते हैं, ये उपकार नहीं है। वास्तव में उपकार तो यही है कि उसके कल्याण का विचार हमारे भीतर आवे और हम उसके कल्याण में निमित्त बने, ऐसा उपकार। दो छोटी छोटी सी आपको घटनाएं सुनाऊं, और बात पूरी करता हूं, क्योंकि मुख्य बात तो यही है कि मुझे सच्चे देवगुरु शास के प्रति श्रद्धा है। अब मुझे थोड़ा काम और करना है, अपने उस सच्चे देवगुरु शास के प्रति श्रद्धा को निर्दोष बनाना है, अपनी कषायों को मंद करके व्रत नियम इत्यादि धारण करके अपनी उस दृष्टि को और निर्मल बनाना है, और उसके साथ साथ मुझे अभ्यास करना है प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिकता का। अभी अभी केवली शुद्ध केवली का पादमूल मुझे उपलब्ध नहीं है, पर मेरा ये अभ्यास आगामी जीवन में काम आएगा। जब कभी मुझे ऐसा द्रव क्षेत्र काल जो अनुकूल होगा, भाव तो मेरे आज हैं लेकिन अभी द्रव क्षेत्र काल की अनुकूलता नहीं है, तो मैं भाव तो अपने बनाए रखूं। जब मुझे द्रव क्षेत्र काल की अनुकूलता होगी, जब चौथा काल होगा, मुझे वज्रवृष नाराज सहनन द्रव मिलेगा, और क्षेत्र यही भरत क्षेत्र या कि ऐरावत या कि विदेह क्षेत्र, पर कर्म भूमि में मुझे क्षेत्र प्राप्त होगा, तब जाकर के और मेरी ये भावना फलीभूत होगी। ऐसा विचार करके हम अपनी इस भावना को रोज रोज भाएं कि मेरे वह सम्यक दर्शन, उसमें निर्मलता आवे, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक मेरे हमेशा बने रहें। एक छोटी सी घटना, अनुकंपा क्या चीज है, प्रशम भाव क्या चीज है, ये सब अगर देखा जाए तो एक ही चीज है। ये प्ररूपण अलग अलग भले किया हो, कषाय की मंदता होने पर ही हमें ये सूझता है कि संसार से पार चले, तभी कषाय की मंदता में हमें प्राणी मात्र के कल्याण की बात सूझती है, आत्मस्वरूप का भान होता है। बताइए, ये सारी चीजें उसी वजह से होती हैं, हम उसी के लिए पुरुषार्थ करें कि कैसे मुझे कषायें मंद हो और कैसे मैं अपने उस दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए और व्रत नियम और तत्व का अभ्यास कर सकूं। वो छोटी सी घटना विवेकानंद के जीवन की है, अपन को तो उससे अपने मतलब की चीज लेनी है, किसी की भी हो। वो विदेश यात्रा पर जा रहे थे दया करुणा और मैत्री का संदेश देने के लिए। उन्होंने जिसको गुरु मान रखा था उनसे आशीर्वाद लेने गए वो, तो पता लगा कि गुरु जी तो कहीं गए हुए हैं। गुरु जी की जीवन साथी थी शारदा मां, वे रसोई में काम कर रही थी, तो जाकर के कहा कि मां मैं विदेश जा रहा हूं, करुणा मैत्री और दया का संदेश देने जा रहा हूं, गुरु जी तो है नहीं, आप ही आशीर्वाद दें कि मैं उसमें सफल हूं। अब जब कोई दया करुणा और मैत्री की भावना भाए तो फिर आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए भी आशीर्वाद की आवश्यकता है, और इसीलिए वो मांग रहे हैं कि आशीर्वाद दें, तो माने तो सुना ही नहीं जैसे, तो दूसरी बार कहा, वो अपने काम में ही लगी रही, दूसरी बार कहा कि मां मैं जा रहा हूं, अब समय नहीं है, मुझे शीघ्र जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं दया करुणा और अहिंसा का संदेश दे सकूं। तो बचपन का नाम उनका नरेन था विवेकानंद का, तो बोले नरेन वो चाकू पड़ा उठा के देना, बताओ हम आशीर्वाद मांगने आए। वो कह रहे कि चाकू पड़ा वो उठा करके दे, तो चाकू उठा करके जैसे ही देने लगे तो चाकू हाथ में नहीं पकड़ा माने और हाथ उठ गया, जाओ मेरा आशीर्वाद, तुम अपने मिशन में सफल होगे। ये और आश्चर्य, जब चाकू मंगाया था तो ले लेना था, हाथ में बिना लिए ही आशीर्वाद देने लगे, जब आशीर्वाद मांगा तो आशीर्वाद नहीं दिया। तो पूछ लिया उन्होंने कि मां जब मैंने आशीर्वाद मांगा तो आपने आशीर्वाद नहीं दिया, मुझे काम सौंप दिया, और जब मैं काम पूरा कर नहीं पाया और उसके पहले ही आपने आशीर्वाद दे दिया, मुझे कुछ पहली समझ भी नहीं आई। बोले मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि जिस अहिंसा करुणा का संदेश देने तुम जा रहे हो वो तुम्हारे जीवन में आई है कि नहीं, तो मैंने परीक्षा कर ली, तुमने चाकू उठा करके फलक तो अपनी तरफ रखा और उसकी डंडी मेरी तरफ बढ़ा करके और मुझे वह चाकू दिया। तुम अगर फलक की तरफ से पकड़ा कर चाकू देते तब तो फिर तुम्हारे भीतर अहिंसा नहीं है ये मुझे मालूम पड़ जाता। अब तो ये मालूम पड़ गया कि तुम अपने प्राणों को खतरे में डाल करके भी दूसरे के प्राण बचा सकोगे, तुम्हारे भीतर अब दया करुणा और मैत्री आ गई है। अपन भी अपनी परीक्षा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बातें तो अपने पास बहुत सारी हैं, दया करुणा अहिंसा और अनुकंपा की, और सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये। और हम अपने आप को तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का बहुत भक्त मानते हैं, और हमारे भीतर ऐसी आई कि नहीं आई, हमारे अपने साधर्मी पर आने वाली विपत्ति में हमारी दया करुणा कहां चली जाती है, जरा विचार करना पड़ेगा। अभी आज रात में देखेंगे हम कितने लोग उस दया करुणा और उसका पालन करते हैं। आ गई वो कैसेट बहुत दिन से जिसका इंतजार था, कॉस्मेटिक्स में होने वाली हिंसा का देखेंगे कि कितना, बहुत से लोग तो देख ही नहीं पाते। मैंने सुना है उस कैसेट के बारे में, देखी कभी नहीं है, कि उसको बहुत सारे लोग जो संवेदनशील हैं वे तो आधी अधूरी देख करके उठ करके भाग जाते हैं कि अपन से नहीं देखी जाती। और एक व्यक्ति का उदाहरण है मेरे अपने सामने का, कि उन्होंने सबसे पहले थोड़ी सी ही आधी से कम ही कैसेट देख करके सीधे भागे थे और अपने घर जाकर के जितने चमड़े के सामान थे, बैग, पर्स, चप्पल, जूते और जितनी भी कॉस्मेटिक रखी हुई थी, जितनी लिपस्टिक, नेल पेंट, सब एक थैली में भर करके सबसे पहले नाली में फेंक करके आए थे वो, ये देखने के बाद। और कह दिया था कि घर में ये चीजें अब इसके बाद नहीं आएंगी। हिंसा पर खड़ा हुआ जीवन कहां पहुंचेगा मुझे बताइएगा। हिंसा पर खड़े होकर के हम अहिंसा की बात करेंगे, कैसे आएगी अहिंसा हमारे भीतर, कहां से आएगी दया और करुणा। इसलिए दर्शन विशुद्धि, जिससे कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, वो तब आती है जब हम अपने जीवन में स्वयं अपने कल्याण का उपाय करते हैं और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिंतित होते हैं। हमारे द्वारा उसका कल्याण ना हो इस बात के लिए हम सावधान रहते हैं, तब जाकर के इस ऊंचाई को हम प्राप्त करते हैं। हम भावना तो भाई सकते हैं कि हमें भी ऐसी सद्बुद्धि मिले, हमें भी हमारे भीतर भी ऐसी भावना आवे कि हम भी अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बने। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में। भववंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात
रक्त लुटाया करते हो शमशम की अविनश्वर मणिया। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आप पर वास वेखो मानु सेवकानी है। अनुभवताय वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य और आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो।